में दोष आवे उनको भजन ध्यान किया दूर किया पीछे वही कर बैठे, तो उनमें फिर कंकर क्यों रलाते हो भाई? गज स्नान का हाथी होता है, स्नान करता है फिर रेती लेकर सूर्य में फेंक लेता है ऊपर, फिर रेती लगा ली। तो इस तरह से सावधान रहे, सावधानी है ये साधना है, हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा। ये तो प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा। जागत नगरी में चोर न जागे, जग मारे ला जम दूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता, सब सूता सूता। इस वास्ते हरदम सावधानी रखे, ये सात्विक तप कहलाता है और राजसी तामसी हो जाता है महाराज। सत्कार मान पूजा अर्थम तपोदम बेन से भी है, तो सत्कार मान पूजा के लिए तप किया जाए, क्योंकि ऐसा तप करेंगे हम संयम से रहेंगे तो लोग आदर करेंगे, पूजा करेंगे, उस देंगे भी, प्राप्त भी हो जाएगा, कम से कम अच्छा तो मान ही लेंगे। ऐसा है सत्कार मान पूजा अर्थम तपोदम बेन, और दिखाओ जपन किया जाए, जब लोग बैठे हैं तो तब करते हैं, जो कोई नहीं है तो सो जाओ आराम से, अब क्यों तकलीफ देखो, कोई देखने वाला है ही नहीं। ऐसे देखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अपने अच्छे गुण लाना, उनमें वही मान बढ़ाई आदर यही होता है, पैसा आदि मिल जाए, कुछ कुछ मान आदर मिल जाए, इन बातों को लेकर के दंभ किया जाता है, दिखावटीपन। ये दिखावटीपन को भगवान ने आज भी संपत्ति से, संपत्ति में सबसे पहले कहा दम्भोदर पो भी मानस क्रोध पारुषी में, ये दम्भ है आज भी संपत्ति में मुख्य है। इस वास्ते दम्भ ना हो, दिखावटीपन ना हो, जहाँ जैसा बनने से लोग आदर सत्कार करे, भीतर से वैसा न होने पर वैसा बनना वो भी दम्भ है। अच्छाई पढ़े भी दम्भ चलता है और बुराई में भी चलता है, जहाँ शराबी कबाबी आदमी है ऐसे नीच आचरण में उनमें जावे तो वैसे ही बने बिना उनका उनमें आदर नहीं होता, क्या करें आज सोसाइटी ऐसी है, हमें सोसाइटी में रहना पड़ता है, वो अगर नहीं खाए पिए तो क्या होगा, लोग तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, नीची दृष्टि से देखेंगे, तो वैसे ही बन जाओ, वहाँ मन नहीं करता है वो खान पान करने का, साथ में रहने का मन नहीं करता, फिर उनको राजी नहीं। ये भी दम है, मानो अच्छा बढ़ने में भी दम्भ है, बुरा बढ़ने में भी दम्भ है, क्योंकि वो अच्छा सोसाइटी में बहुत अच्छा गए, वो दम्भ है चाहिए तो क्रिय थे बोला, और आयास बहुत होता है। राजसी पुरुष को परिश्रम ज्यादा मालूम देता है, सात्विक पुरुष के परिश्रम नहीं दिखता, सात्विक की शुद्ध वृत्ति होती है उसमें कितने परिश्रम करे तो परिश्रम मालूम ही नहीं देता, राजसी के थोड़ा सा हो तो घबरा जाता है, इतना धंधा करना है, इतना ये करना है, कैसे हो, तो राजसी को बहुलायास ऐसा होता है, वो तब राजस्व होता है, राजस्व रजोगुण आ गया, रागात्मक आ गया ना, स्वार्थ खींचता है जड़ चीजों को अपनी तरफ खींचता है, रजोगुण होता है वो, और सतोगुण होता है वो त्याग करता है। ऐसा राजसी तप होता है, तो सात्विक बताया उसमें त्रिविधम पद दिया, राजसी और तामसी में त्रिविध पद नहीं दिया, श्रद्धया पर्या तप्तम तपस्ता त्रिविधम, और यहां क्या कहते हैं, यहां कहते यत और तत्, जो ऐसा किया जाए तप, वो तप जो तप है वो ही हो जाएगा, तो तीनों प्रकार का पूरा तप सात्विक में होता है। भाव संशुद्धि का से लागो, अपराकांक्षी के फल इच्छा न हो, मन प्रसाद है सौम्यतम मौनम आत्मविग्रह, भाव संशुद्धि घटेगा नहीं, अनुद्वेग कर्म रहेंगे, स्वाध्यायाम और दूसरे किसी को दुख ना हो, प्रिय लगे, ऐसी बातें होती है, तो राजसी में तो अपना स्वार्थ सिद्ध होगा, ऐसी बातें होगी। तो सात्विक तप होता है पूरा, तो तीन पहले कहे शरीर वाणी और मन के द्वारा तप कर, फिर चौथा श्लोक कहा, तो ये चार श्लोक मिलकर के पूर्ण तप होता है सात्विक। सत्कार मान पूजा अर्थम तपोदम भेन सेवित क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसम चलम, वो के तदीह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम, यह पुरोहितम का मतलब कि यहाँ ही अपना कर लिया, तप कर लिया, लोगों में महिमा होगी, वाह वाह होगी, बस जयराम जी की, आगे क्या होगा, यह पुरोहितम। और राजस कहलाता है चलम और अध्रुवम, ये चल और अध्रुव क्या हुआ भाई, एक ही बात है कि चल ये होगा कि फल हो जाएगा तो रहेगा नहीं, और अध्रुव करे फल मिले न भी मिले, पोल निकल जाएगी नहीं मिलेगा फल, दम्भ किया पर तो कहीं उड़ जाएगी बात, निकल जाएगी तो फल भी नहीं मिलेगा, तो ध्रुव मानो फल मिले ऐसा ध्रुव निश्चय नहीं है, और मिले तो इस चलम है थोड़ी देर खत्म हो जाएगा, अगड़ी कुछ नहीं हाथ लगेगा, क्यों राग पूर्व किया नहीं, ये काम है ना, इसको महासन कहा है, महासनो महापाप मा विद्येरम वेरम, बड़ा पापी महासन है, मन बहुत खाने वाला है, तो ये जितनी जो अच्छी अच्छी बातें जो खा जाता है, चलम अध्रुवम इसका फल नित्य मिले ऐसी बात नहीं। हाँ अभी क्या भाई, मूढ़ ग्रहण आत्मनिर्भर, मूढ़ता से, मूढ़ता का आग्रह अपना पर मनमाने ढंग से करे, तप करे मनमाने से, मूढ़ता लेकर के वो आश्वन सेवा बताया था, मूढ़ ग्रहण आत्मनिर्भर, अपने को पीड़ा दे अरे परस्य उत्साह में, और तो दुख देने के लिए अपने मूढ़ता से किया जाए तो वो तामस तप होता है, जो अशास वेतन घोरम तप्यंते तपोजना दम्बा अहंकार संयोगता, उसके सामने जाएगा तो मूढ़ ग्रहण आत्मनो यद पीड़िया कीते तो परस्योत्साधनार्थम वा, तपस्या करे जो घोर तप करेंगे उसका नाश करना है, सबका उच्छेदन कर देना है, ऐसा जप करेंगे, मसाना में बैठ कर तप करेंगे और जप करेंगे, किसी तरह से दूसरे का नाश हो जाए तो वो तामसी तप है। ये बताया यज्ञ तप, अब आता है दान, दातव्यमिति यद्दानं दीयते इनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं श्रुतं, दातव्यम इति वही यष्टव्यमेति मनस्समाधाय, ऐसे तप्तव्यम तप, तप करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ऐसे दातव्यम देना चाहिए, क्यों देना चाहिए कि तुम धन रखते हो, धन कमाते हो, धन पास में है तो देना तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है, लेना ही लेना नहीं है, यहाँ तो परस्परम भाव अंत श्रेय परम भाव से था, परस्पर सेवा करते हुए कल्याण को प्राप्त हो गए, अपने पास हो गया दबाकर बैठ गए तो पाप हो गया, पाप अपने लिए पचाते खाते हैं, वे पापी कोरा पाप का भक्षण करते हैं, ऐसा गीता ने कहा है, तो ऐसा देना कर्तव्य है भाई, लिया है पास में दे दो, देना चाहिए, दातव्यम इति यद्दानम दिए थे अनुपकारिणे, मनो उपकार की जहां संभावना नहीं, उपकार पाया नहीं, फिर वो उपकार करेगा ऐसी आशा नहीं, ऐसी जगह दिया जाए तो वो सात्विक होता है, और प्रत्युपकारार्थ में तो राजस होता है भाई, वो राजस तप होता है, वो तप का वो दान का है वो तो लेना देना है, तो सात्विक तप वो दान वो होता है जिसमें प्रत्युपकार अनुपकारिणे, अरे देशे काले च पात्रे च, देश और काल और प्राप्त पात्र प्राप्त हो जाए, जब देश काल पात्र प्राप्त हो जाए तभी वहाँ दान कर दो, अच्छा देश आ गया तो उस देश में दान करो, गंगा जी आदि तीर्थ है, प्रयागराज आदि तीर्थराज है, ऐसे देश और काल में अमावस्या है, प्रतिपात है, पूर्णिमा है, अक्षय तृतीया आदि पुण्य काल है, प्रतिपात आदि जिसमें पुण्य करना चाहिए, ऐसा समय प्राप्त हो जाए, और पात्रे च जो अच्छे शुद्ध ब्राह्मण है, सदाचारी सद्गुणी वेद पाठी ऐसे मिल जाते तो ब्राह्मण को पात्र प्राप्त होने पर, दूसरा अर्थ है देश जिसमें अकाल पड़ा हुआ है, जहाँ घास की जरूरत है गायों के लिए, अन्न की जरूरत है मनुष्यों के लिए, और जल की जरूरत दोनों के लिए, इस तरह से घास अन्न और जल का वहाँ प्रबंध किया जाए, किस तरह से वहाँ पहुँचाया जाए, ऐसे जाड़ा है ठंडी में ठिठुक रहे हैं, कपड़ा उनके पास नहीं है, उनकी आवश्यकता हो से जिस देश में और जिस समय में जिसकी जरूरत हो, शीतकाल में कपड़े की जरूरत है, गर्मी में जल की जरूरत है, अन्न की सब अवस्था में जरूरत है, तो देश काल और पात्र तो आवश्यकता जिनकी हो जाए वो भी पात्र होता है, शुद्ध पात्र है ब्राह्मण आदि को भी, और दूसरे जैसे अन्न जल आदि की जरूरत पड़ती है तो किसी वर्णकार किसी आश्रम का क्यों हो, भूख प्यास दूर हो जाए, ठंडक दूर हो जाए, रोगी है तो उसको दवाई दी जाए, ये प्राप्त होने पर देना है, इसको सात्विक दान कहते हैं। और यत्तु प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकार के लिए दिया जाए कि हम दान देंगे तो ये भी हमारे दान देगा, हम अपने दान की इतनी चीजें निकाली या अधिक मास में व्यतिपात में इतनी चीजें निकाली तो अपने सगों का ब्राह्मण है उनका रसोईया है उनको दो उनके यहाँ। और आयुर्वेद काम करते वैद्य जी से काम करता तो वैद्य जी को भेज दो। इसलिए जो उपकार के लिए अपना मतलब सिद्ध करने के लिए उनको दिया जाए, घर का ब्राह्मण है वो भी देवतों की देव कभी आएगा काम आ जाएगा अपने। ज्योतिषी जी महाराज पंचांग देखते हैं इनको भी दे दो थोड़ा। ऐसे प्रत्युपकारार्थम फल मृद्यु शिवापन और फल को ले दिया, फल होगा तो स्वर्ग मिलेगा, बड़ी ठीक हो जाएगा, सब एक साथ ही हो जाएगा। यहाँ कर कर फल मृद्यु शिवापन दीते जब पले कृष्णम और क्लेश पार दिया जब कर क्या धन खर्चा आ गया माथे पर, इतना खर्च हो जाएगा, इतनी पूंजी कम हो जाएगी, पर तब तो देना पड़ता है क्या अगर लोगों में बैठे नहीं दे तो बुरा लगेगा। इस वास्ते दो भाई ऐसे दुख पा करके दांत बीच छाती कर लेकर के दिया जाए किसी तरह से तो ये राजसी दान होता है, रजोगुणी दान होता है, वो सात्विक दान है। सात्विक पुण्य स्मृति पवित्र दान से गणना वो पवित्रता नहीं आती, धन भी खर्च हो जाता है और पवित्रता भी नहीं आती, और नीयत शुद्ध हो जाए तो कैसी बढ़िया बात है। सात्विक भाव से दान दिया जाए। और दूसरा है हमारा तामसी दान, तो क्या बताओ ये तो राजसी है। आदेश काले यद्दान अपात्र भेष दिए थे, देश काल पात्र न देखना, आदेश काले है जो देश काल न देखना भी हो जाता है और विरुद्धार्थ नहीं भी होता है। जिस देश में नहीं देना चाहिए उसी देश में देंगे, जिस पात्र को नहीं देना चाहिए शास्त्र निषेध किया उसी पात्र को देंगे, जिस काल में निषेध किया हम मानेंगे नहीं दूसरे काल में देंगे, ऐसे विरोध करके और दिया जाए। आदेश काले यद्दान अपात्र भेष दिए थे, अरे असत कृतम और अवज्ञातम दे तो फिर असत कार्य पूर्ण दे। घर के ब्राह्मण आए, देखो हमारी माँ मरी तो आए नहीं, पिता मरे दादाजी मरे तो आए नहीं, अब आए तो हम तो देंगे, पर आप तो करो। तिरस्कार करना, अपमान करना, दो खोटी खरी सुना कर तिरस्कार करके लो हम तो बाढ़ते देते ना तो बाढ़ते होगा, ये देते तो कुछ होगा नहीं, धन भी बाढ़ते हो अंतकरण भी बाढ़ते हो, तो ये तामसी हो जाता है। अब क्या करेंगे, मांगने वाले हो गए, ये सब कमा सकते खा सकते, कमाया नहीं जाता है, नीयत खराब कर ली, साधु बन गए मांगते फिरते मुफ्त खोर, ऐसे कह कर तिरस्कार अपमान करके ले जाओ टुकड़ा जा ले जा। तब तामस उदार, तब ये तामस दान, दान में ऐसी बात है कि भाई गीता ने लिखा तो है अधो गच्छन्ति तामसा, तामस है वे तामसी तो अधोगति को जाते हैं, तो दान देने वालों की अधोगति होगी। कहते ऐसा अर्थ कर दें तो गोस्वामी जी महाराज लिखते येन केन विधि में दान करे कल्याण। धर्म के चार चरण है, कलि में एक प्रधान, कलयुग में एक चरण प्रधान है दान देना। येन केन विधि में दान करे कल्याण, किसी तरह से दिया जाए तो वो कल्याण करता है। कल्याण करता है, कहते दूजी तामसी वृत्तियां तो खराब है और दान भी तामसी खराब ही है, परंतु देने में इतनी खराबी नहीं, किसी तरह से देना तो सीखो भाई, फिर उसमें सात्विक कर लेना, नहीं तो ये पात्र नहीं है, ये मौका नहीं है, इसको देना नहीं चाहिए, ऐसा तो अपात्र पात्र देखते आपको पात्र बन जाओगे, दृष्टि यही रह जाएगी, देना बंद हो जाएगा। इस वास्ते श्रद्धया देयम अश्रद्धिया देयम, लज्जा कर देवे भयभीत हो देवे श्रद्धा से देवे अश्रद्धया अदेयम, ऐसा वहां करते हैं, परंतु संत तो ऐसा कहते हैं अश्रद्धया भी देयम, दी वो तुम किस देने का स्वभाव तो डालो कम से कम, तो वो अधोगति नहीं करता, कारण के अल्पत पास से दिया ही है, किसी ने त्याग किया है ना कुछ तो अच्छा ही है, तो देने का स्वभाव दे होना चाहिए। खास गृहस्थ के लिए तो आवश्यक इसको बताया, क्योंकि गृहस्थ है यही दान देने वाला है। देखो ब्रह्मचारी मुक्त है और हम लोग भी मुक्त है और वानप्रस्थ भी बैठे बेचारे जंगल में तो भी मुक्त है, तो इनका सबका भरण पूर्ण गृहस्थाश्रम ही करता है। गृहस्थाश्रम का माँ बाप गृहस्थ में गृहस्थ से ही पैदा होते हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ है, गृहस्थ पैदा गृहस्थ नहीं, वानप्रस्थ गृहस्थ नहीं, सन्यासी पैदा होते हैं और पालन भी यही करते हैं, और पैदा करे और पालन करे वही माँ बाप। तो ये माँ बाप है सबके, इस वास्ते सबको देव भाई भरण पूर्ण करो, अपना कर्तव्य समझो, उनकी तरफ ज्यादा मत देखो, कम से कम अपनी तरफ देखो, अपना दान बंद मत करो, इस वास्ते अपने दान देना चाहिए, हितकार करना चाहिए। वो तामसी हो जाए तो तामसी पना मिटाओ, कहते ये तो बड़ा तामसी राजसी का बड़ा झगड़ा ये आ जाए तो हम इनके क्या करें, कि अब सात्विक करो कि सात्विक में भूल रह जाए, कहीं कमी आ जाए, कमी राजसी तामसी भाग जाए तो क्या करें, तो सुनो उपाय बताते। ओम तत्सत निर्देशो ब्रह्मणस्त्र, ओम तत्सत ये परमात्मा का नाम है, तो ये नाम है राम कृष्ण गोविंद वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद भगवान के नाम है, तो ये नाम उच्चारण कर ले, हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि पाठ करके भी उच्चारण कर ले, परमात्मा का तत्सत कर ले, राम 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 राम। संतों ने मैं सुना है पाठ करते जब भूल गए राम 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 कर फिर पाठ शुरू कर देते हैं, भगवान का नाम लेने से वो सब शुद्ध हो जाते। ब्राह्मणास्तेन वेदास्त यज्ञास्त वेदा पुरा, वेदों का और यज्ञों का और ब्राह्मणों का सृजन किया, इनका इनको पैदा किए, तो पैदा किए तो अच्छा काम करने वाले ब्राह्मण, वेद बताने विधि बताने वाले वेद और यज्ञ अनुष्ठान, ये करने से ये पैदा हुए परमात्मा से, और परमात्मा का नाम लिया जाए तो इससे पैदा हुए यज्ञ तप आदि वेदों में आज्ञा आई है तो उनमें कमी रह जाए तो भगवान का नाम लेने से उसकी पूर्ति हो जाती। कैसी बढ़िया बात हुई, वैकुंठ धाम ग्रहणम अशेषाघरम विधि, सब पाप दूर हो जाते, विधि से कमी रह जाए और किसी उच्चारण में कमी रह जाए, अशुद्धि आ जाए किसी तरह की आ जाए कमी, तो वो करके भगवान का नाम उच्चारण कर लो बस, इस बात हरि ओम तत्सत कह करके बस उच्चारण करते, भगवान का नाम लेकर के करो और करके भगवान का नाम उच्चारण करो, तो ये हो जाता बढ़िया चीज। अब ओम तत्सत निर्देशो तीन बताए, अब तीनों की व्याख्या अगर तस्मात ओम इत्युदार्यते यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादी नाम, वेदवादी जितने वेद पढ़ेंगे तो ओम का उच्चारण मुख्य होगा उनका, ओम है ये सब बल देने वाला, सबसे पहले ओम हुआ त्रिपद और त्रिपदा, फिर तीन पदों से त्रिपदा गायत्री हुई, गायत्री से वेद त्रयी हुई, तो सबका मूल परमात्मा का नाम है, तो वेद पढ़ने वालों के लिए ओम नाम मुख्य है, वो जितनी विधि करेंगे सब ओम नाम है ऐसा। ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्मवादी नाम वेदवादियों का है, वेद पढ़ने पढ़ाने वाले इसमें लगने वाले उनके ओम मुख्य होता है। भक्तों के लिए तदितितने संधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया सुविधा क्रियंते मोक्ष कांक्षी, जो कल्याण चाहते हैं मुक्ति चाहते हैं ऐसे पुरुष होते हैं, तत् को ले रहे उस भगवान के लिए भगवत अर्पण है, सब यज्ञ दान तप तीर्थ प्रसाद किया जाए, श्री कृष्ण अर्पण वस्तु भगवत प्रीति अर्थ करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज, भगवान राजी हो जाए, अरे भगवान राजी हो जाए बाकी क्या रह जाए, सब काम पूरा हो जाए, तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो तत्व उच्चारण करते हैं, भगवान को सामने रख करके उनका नाम लेकर के उनकी प्रसन्नता के लिए क्रियंते मोक्ष। अब सत की व्याख्या करते हैं, तो तत्सत क्या होता है, पांच अर्थ के सद्भावे साधु भावे सदी तत्वते, सत्ता जो होना पर उसका नाम सत्य है, और जो श्रेष्ठ है सद्भाव है श्रेष्ठ भाव है उत्तम भाव है, वो श्रेष्ठता का नाम भी सत है, कर्म की जो सत्कर्म है सा, और ये सत्ता है सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है व्यापक है, ये सत्ता है सद्भाव साधु भाव प्रशस्त कर्मणि तथा, और प्रशंसनीय जितने कर्म उनको भी सत्कर्म कहते हैं, व्यवहार में भी श्रेष्ठ काम है अच्छे संसार की सेवा आदि करना है, शास्त्र की विधि के अनुसार से बालक का संस्कार करना है, और संस्कार साथ विवाह आदि है, ये सब सत्कर्म है, इनका नाम भी सत कहलाता है। और क्या कहें बताओ, यज्ञ तप दान में जो स्थिति है, किसी के यज्ञ करने की होती है तो वो यज्ञ ही करता है, किसी के दान देने की होती है तो वो दान ही देता। हरि सिंह आदि सत्यवादी है, दान देते हैं और यज्ञ करते हैं, कोई तपस्या करते हैं तपस्या में लगे, इनमें से किसी में स्थिति होती है वो स्थिति भी सत है, वो भी अच्छी है। यज्ञ दान तप है वो है सतगुणी में, स्थिति के नाम ही तप है। और भगवान कहते हैं सामान्य बात, कर्म चैव तदर्थी, हम भगवान के लिए कर दो सब सत हो जाएगा, चलना फिरना उठना बैठना भगवान की तरफ जाते हैं, हम भगवान को याद रखते हैं, एक एक कदम में भगवान का नाम लेते रहे, भगवान तरफ जाते, चलना फिरना भी सत हो जाएगा। कर्म चाहिए वो तदर्थी, हम आग में डालो सब चमक उठता है एकदम, ऐसे भगवान का उद्देश्य लेकर किया जाए चलना फिरना, तो असत काम तो होगा ही नहीं। भगवान के लिए करें तो सत्र भगवान की आज्ञा के अनुसार श्रेष्ठ कर्म होंगे, और भगवान को सामने रखेंगे तो सब कर्म से ही बता दर्थ विश्वास नेहा विक्रम नाशोषी प्रतिभा विद्यते, इसका आरंभ मात्र का भी नाश नहीं होता, क्यों भगवान के लिए किया अपने कामना नहीं रखी। ये महाराज सत्कर्म श्रद्धा बताई। अब अश्रद्धा अश्रद्धा उत्तम तत्म तपस्म पहले का पहले क्या शास्त्र विधि को त्याग करके काम कार सिद्धि न सुख न परांगति, ऐसे ही अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप यज्ञ दान तप किया और भी जो तीर्थ व्रतादि किए, अश्रद्धया अश्रद्धा नहीं है मन में तो दुर्भाव है, पर तो कर ले लोग करते हैं तो कर देते हैं अपना, ऐसे अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप तम कृतंजयत अशुद्धि पार्थ, वो अशुद्ध हो जाता सत नहीं रहता, यहाँ फल देता है ना परलोक में। कीर्तन से यत है इसमें ऐसा नहीं जप ध्यान भगवान का चिंतन भगवत कथा इसमें ये लागू नहीं पड़ा, कीर्तन से कर्मों की बात है, भगवान को सामने रख रहे तो कर्म से तदर्थी हम सत हो जाएगा सब सब भगवान को सामने रखने से, तो भगवान की उपासना भगवान का नाम लेने सब ठीक हो जाता है। भगवान से विरुद्ध करो तो भाई ठीक तरह से करो तो ठीक हो, नहीं तो असत हो जाएगा। न सत प्रेतन हुई है विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवाद श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम शब्द हो गया। अच्छी बातें सुनने में आवे उनमें जितनी जितनी सुगम दिखे उनके अनुसार तो पकड़ ही लेनी, वैसे तो असलभ करना ही है। कर्म मात्र का सत्कर्म है और यज्ञ दान में स्थिति है, मेरा निष्ठा होती है, किसी तीर्थ में निष्ठा होती है, किसी की यज्ञ करने में निष्ठा होती है, किसी दान देने में निष्ठा होती है, किसी तप करने में निष्ठा होती है, एक को पकड़ करके वो निष्ठा होती है, वो भी सत्य। नारायण 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 भगवान का दान ही करना है, तो भगवान की लीला है महाराज, भक्तों का अभिमान दूर कर देते हैं। एक कोई ब्राह्मण मर गया, उसने कह दिया कि भाई हमारी दाह क्रिया तो चंदन में करना, और चंदन मिला नहीं तो वो ब्राह्मण आएगा हमारे पिताजी की दाह क्रिया के लिए चंदन चाहिए, उस समय खजाने में पास में था नहीं, इधर उधर पूछा तो बरसा बरसते ही और मिला नहीं चंदन, बाहर कोई रखा हो तो पूछ गया क्या करे, तो उत्तर मिल गया। कर्ण के वहाँ पहुँचा कैसा, हमारे पिताजी पूजनीय आदरणीय बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, चंदन की लकड़ी में मैं तो दाह क्रिया करूँ, हाँ लाओ मजूरों को बुलाओ, ये अपने महल जितने के भीतर में जितना चंदन तड़ा हुआ तोड़ो तोड़ो ब्राह्मण को तोड़ा कर दे दिया। अरे ये तो हमारे ही ऐसे महल तो थे, मन में नहीं आया तोड़ा नहीं है सर, उसका नहीं गया तोड़ा, ऐसे दान ही है तो दान में यज्ञ में तब में मंदिर की निष्ठा होती है और आती कई कथा, अपने तो सच्चे काम में लग जाओ भगवान निष्ठ हो जाओ सब काम ठीक हो जाए, एक भगवान में
श्रद्धा और निष्ठा में
पूज्य भाव सहित करने की होती है, निष्ठा तो एक किसी विशेष में होती है ना, निष्ठा तो सब में यज्ञ में ताम दान में तब में श्रद्धा तो सब में होती है, निष्ठा तो किसी एक में ही होती है, किसी माँ बाप की सेवा में ही निष्ठा होती है, किसी के गुरु में ही निष्ठा होती है। ऐसे निष्ठा तो एक जगह होती है, श्रद्धा तो शास्त्र जितने काम सब में श्रद्धा पूज्य भाव आदर सहित विश्वास, आदर सहित विश्वास श्रद्धा सामान्य होती है, निष्ठा एक किसी में स्थिति होती है। शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम
प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 जून 1982 को प्रातः 8:30 बजे स्वर्गाश्रम में गीता भवन नंबर 3 के बगीचे में दिया गया। राम राम राम।
महाबाहो हे भगवान, सन्यास का मैं तत्व जानना चाहता हूं और साथ साथ कह त्याग से और त्याग का भी तत्व जानना चाहता हूँ। साथ एक लगे पृथक अलग अलग, तो अलग अलग दोनों के तत्व को जानना चाहता हूँ। तो दो निष्ठाएं ये तो अलग है ही, परंतु निष्ठाओं की आवांतर भेद भी अलग अलग है, वो भी मैं समझ लूं। तो भगवान ने ये अलग अलग बताए, पहले त्याग का तत्व बताते हैं 12 तत्व, फिर सांख्य का तत्व बताते हैं 40 तक, इसके बाद फिर योग का तत्व बताते हैं, त्याग का तत्व बताते हैं, उसमें भक्ति का मिश्रण है, उसके बाद फिर सांख्य का निष्ठा ज्ञान स्थिया परा संन्यास का तत्व बताते हैं, जिसमें ध्यान की प्रधानता है। ऐसे इनके भेद को बताया। अब वो बताने से पहले इस विषय में दूसरे आचार्यों का मत बता देते हैं। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। कई कवि लोग ऐसा कहते हैं, काम्य कर्मों के त्याग का नाम संन्यास है। तो संन्यास के विषय में ये दूसरों का मत बताया। और त्याग के विषय में सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। कई विचक्षण पंडित कर्मों के फल को त्याग है, इसका नाम त्याग कहते हैं। और कई कहते हैं कि त्याज्यम दोष वदित्य के कर्म प्राहुर मनुष्य ने संन्यास ऐसा है कि संपूर्ण कर्मों का ही दोषों की तरह त्याग कर देना, इसका नाम संन्यास कहते हैं। और कई क्या कहते हैं, यज्ञ दान तप त्याज विचार परे। दूसरे कहते हैं यज्ञ दान तप ये छोड़ना नहीं, मानवीय करना। ये चार भेद बताए अलग अलग आचार्यों के मत बताए। ऐसा मत बता करके अपनी बात कहते हैं, निश्चयम शूमे तत्र त्यागे। संन्यास और त्याग तेने दो चीज पूछी, उन दोनों में से त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो। इससे सिद्ध हुआ कि संन्यास का तत्व अगड़ी कहेंगे। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध। वो त्याग भी भैया तीन तरह का होता है, ये पृथकता से पूछा ना, तो वो पृथकपना बताते हैं कि त्याग तीन तरह का होता है। तो तीन तरह का वो सात्विक राजस तामस ऐसे, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। ऐसा कह करके अब बताना शुरू करते हैं। तो भगवान के कहने की शैली विचित्र है, दूसरों के मत का खंडन करते नहीं, स्वतः खंडन हो जाता है। अपना मत सामने रख देते हैं तो उस मत के सामने वो मत फीका हो जाता है। आप साहब कहते नहीं कि वो खराब है, निश्चय कहते हैं। तो अब मेरा निश्चय सुनो, ऐसा कहकर के भगवान ने कहा कि यज्ञ दान तप कर्म नित्याज्यम इति च अपरे कहते थे। तो भगवान खुद भी कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म नित्याज्यम, वो बात तो पूरी उनके लिए ली, और अपने उसमें विशेषता बता दी कार्य में वो तत्व जरूर करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए वो तो उनके लिए जो योगदान तब करते हूं। भगवान के न करते तो शुरू कर देना चाहिए, ये विशेष बात बता दो। क्यों, यज्ञो दानम तपस्तव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप ये तीनों एक एक पवित्र करने वाले हैं, इस बात से त्याग नहीं करना चाहिए। अब जो ये बात दूसरों का काम्य कर्मों का त्याग कर दो, भगवान कहते हैं काम्य का त्याग नहीं है, कामना का त्याग करो। काम्य कर्म है जैसे पुत्र के लिए यज्ञ किया जाए, धन के लिए यज्ञ किया जाए, वो काम्य कर्म कहलाता है। भगवान कहते हैं कामना का त्याग करो। एतान्य पितु कर्माणि, एतान्य के लिए यज्ञ दान तप ये कर्म लेना, और अपितु करके और जितने शास्त्रीय कर्म है तीर्थ प्रसाद वे सब कर्म लेना। संगम त्यक्त्वा फलानि च, वहां फल का त्याग बताया दूसरे आचार्यों ने, भगवान वहां आसक्ति का त्याग और साथ कहते हैं। एतान्य अपितु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च और कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतं उत्तमम्। ये जरूर करने चाहिए, मैं निश्चय कि वह उत्तम मत है। तात्पर्य निकला कि श्रेष्ठ कर्म जितने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हैं और जिस वर्ण और जिस आश्रम के लिए विहित है, उन कर्मों को फल और आसक्ति का त्याग करके और जरूर करना चाहिए। ये त्याग हुआ। अब त्याग तीन तरह का वो खोलते हैं, उसको तीन तरह का वो बताते हैं कि जो नियत कर्म है उसका त्याग कभी करना उचित नहीं है। विहित से नियत में विलक्षणता है। विहित तो शास्त्र ने जो जो आज्ञा दे दी सब के सब विहित है, वे विधान है, आज्ञा है, परंतु जिस वर्ण जिस आश्रम के लिए जिस परिस्थिति में जिस व्यक्ति के लिए एक विशेष कर्तव्य होता है वो नियत कर्म हो जाता है। विहित में से भी नियत हो जाता है। जैसे क्षत्रिय के लिए युद्ध करना कर्तव्य होता है, परंतु जो स्वाभाविक आ गया तो ये नियत कर्म हो गया। तो नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। अगर मूढ़ता से वो त्याग कर देता है तो वो त्याग तामस होता है, क्योंकि मूढ़ता उसमें कारण हो गई। और दुख मिति वेत कर्मा काया क्लेश भया त्यजे, कर्तव्य के पालन करने में दुख होता है, वो दुख की तरफ दृष्टि देख करके काया के क्लेश के भय से छोड़ देता है, तो वो राजस त्याग होता है। क्योंकि सुख को पकड़ा, सुख में राग रहा ना, नहीं वह त्याग फल मिले भाई, उसको त्याग का फल नहीं मिलता। नियत कर्मों को छोड़ने का त्याग क्या हो, त्याग शांति निरंतर, त्याग के बाद शांति मिलती वो नहीं मिलेगी। अब तो सात्विक त्याग क्या होता है, कार्यमिति वेत कर्म नियतं क्रियते दुनो। सात्विक का लक्षण बताते हैं, कर्तव्य कर्म करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए। दो बात मूर्ता से त्याग है, तामस और काया क्लेश भय से छोड़े तो राजस, और करे उसको कार्य में। क्यों करे, कर्तव्य है, केवल कर्तव्य मात्र हमारा है, मनुष्य शरीर पाया है तो अच्छे से अच्छा काम करना है, करना चाहिए, ऐसे समझ करके। और वो कर्म कैसा होना चाहिए, उसका स्वरूप नियत होना चाहिए। कार्य मिति तो उसके मनुष्य का भाव और स्वरूप है नियतम। और संग और फल का त्याग, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। सत्याग सात्विको मत, वो त्याग सात्विक है। ध्यान देना, कर्मों के छोड़ने को तो तामस और राजस त्याग बताया और कर्मों के करने को सात्विक त्याग बताया। तो काम करना करना हुआ, त्याग कैसे हुआ, कहते वो जो तामस त्याग है वो भी दंड देगा, राजसी त्याग भी शांति नहीं मिलेती, उसमें बंधन होगा। और तो बंधन छूटे के से आसक्ति और फल का त्याग कर दिया, अब कर्तव्य कर्म करेगा तो उस कर्तव्य कर्म के साथ में कर्ता का संबंध नहीं रहेगा, ये छूट जाना ही वास्तव में त्याग है। फल की इच्छा नहीं, आसक्ति नहीं, कामना नहीं, मैं मान आदर सत्कार बढ़ाई सुख भोग संग्रह कुछ इच्छा नहीं, केवल कर्तव्य मात्र कर किया। तो कर्तव्य मात्र करने से त्याग क्या हुआ कि जो नहीं करना था राजसी तामसी पुरुषों को वो करने से न करना मिट गया, तामसी पना जो निचला बैठा वो मिट गया, काय क्लेश का जो सुख का भोग था उसकी इच्छा थी वो मिट गया। तो राजसी तामसी पना मिट गया और नियत है इस वास्ते शास्त्र विहित और विहित में भी नियत कर्म आ गया, कर्मों का दोष कोई दूसरा रहा नहीं और फल और आसक्ति त्याग ये जो भीतर रखता है तो अगर ही संबंध मान लेता है वो भी त्याग हो गया तो ये उस कर्मों के साथ में सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, इस वास्ते इसका नाम है सात्विक त्याग। तो सात्विक त्यागी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार तो कर्म करता है और शास्त्र निषेध कर देता है वो काम नहीं करता है, ये सिद्ध हुआ अर्थ है, क्योंकि वो स्वरूप से त्याजी है, विहित कर्मों के लिए ये विचार हो रहा था इतना उस रोता में सिद्ध होने से त्याजी है। अब उसका त्याग में और ग्रहण करने में क्या भाव रहता है वो बताते हैं। न द्वेष्ट अकुशल कर्म, जो अकुशल कर्म है जो संसार में बांधने वाले और नरकों में ले जाने वाले हैं वे सब के सब अकुशल हैं, राजसी और तामसी, उन अकुशल कर्मों का त्याग करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं। और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म जो कुशल है जीव का कल्याण करने वाले हैं उन कर्मों को करता है पर राग पूर्वक नहीं। तो सिद्ध क्या हुआ कि कर्तव्य कर्म करता है अकर्तव्य का त्याग करता है पर राग द्वेष बिल्कुल भीतर नहीं, इंद्रिय सिंद्रिय से राग द्वेष हो गए, राग द्वेष बांधने वाले हैं इनसे सावधान रहो। तो वो त्यागी सत्व समावेश तो मेधावी वो त्यागी है, सत्व समावेश है, मेधावी बुद्धिमान है, छिन्न संशय उसे संदेह दूर हो जाते हैं। तभी एक शंका होती है कि ये कर्मों के करने से होता है, कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दे तो ये जिंदगी आ गई नहीं। कहते नहीं दे व्रता सक्यम तक तुम कर्मान्य शेष, जब तक शरीर धारण कर रहता है तब सब के सब कर्म छोड़ नहीं सकता। तीसरे अध्याय में खूब आया शरीर यात्रा भी तेरह प्रसिद्ध, शरीर का निर्वाह भी कर्म को छोड़ने खाना पीना करना ही पड़ेगा। इस वास्ते देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग कर नहीं सकता, इस वास्ते त्याग क्या होता है जो कर्म फल का त्याग है वही त्याग। यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी विधीयते। इस संसार का जितना जो सुख मिलता है वो सुख मिलता है संयोग से, सांसारिक पदार्थों के संयोग से, और संयोग है वो है दुखों का कारण, यही समझा संबंध जन्य भोग है वो दुखों के कारण है, उस संबंध का विच्छेद करना कर देना ही वास्तव में त्याग है। तो वो फल आता है, फल वो प्राप्त होता है अप्राप्त होता है दृष्ट होता है अदृष्ट होता है तात्कालिक होता है परिणाम में होता है ऐसे कई भेद है, पर फल है वो किए हुए कर्मों का फल, उसका त्याग फल का त्याग क्यों करें। एक मार्मिक बात है, कोई भी कर्म किया जाए उसका आरंभ होता है और समाप्ति होती है, और उस कर्म से जन्य जो फल होता है उसका भी संयोग होता है वियोग होता है, वो फल आ जाता है और फल देकर नष्ट हो जाता है। तो ये उत्पन्न और नष्ट होने वाले संयोग और वियुक्त होने वाले हैं, इसकी इच्छा रखने से फंसावट के सिवाय कुछ फायदा नहीं, और आगे मिलकर चले गए तो कुछ फायदा नहीं, इच्छा रखने मात्र से बंधन होता है। इस वास्ते यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी त्रिविधीयते, वो त्यागी कहा जाएगा। फल का त्याग कर तो फल कितने तरह का होता है कि अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम, एक तो अनिष्ट हम नहीं चाहते, ऐसा हमारे मन के प्रतिकूल परिस्थिति होती है, वो एक फल होता कर्मों का। और एक ऐसा फल आता है जो किसी अंश में हम चाहते हैं किसी अंश में नहीं चाहते, वो भी एक कर्मों का फल है। और एक हमारी इच्छा के अनुकूल जो फल मिलता है वो भी हमारे कर्मों का फल है। इष्ट अनिष्ट और मिश्रित, मन चाहा मिलना, मन बेचाहा मिलना, और कुछ मन चाहा और कुछ मन बेचाहा, ऐसा मिला हुआ मिलना, ये तीन तरह का फल होता है। ये अत्यागी नाम प्रेति वर्ग जो त्यागी नहीं होते उनको फल भोगना पड़ता है, न तो सन्यासी नाम कोचित, जो सन्यासी है त्यागी है उनको कोचित कहीं नहीं भोगना पड़ता, उनके साथ उनका संबंध विच्छेद हो जाता है तो जन्म मन से रहित हो जाता है। यहां तक भगवान ने त्याग का तत्व बताया, जिसमें कर्म की प्रधानता है, ऐसा त्याग है। अब अगाड़ी सांख्य का प्रकरण कहते हैं, संन्यास से महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम, वो संन्यास के कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता, तो संन्यासियों त्यागियों को दोनों के कर्म फल भोगना नहीं पड़ता, मुक्त हो जाते। सांख्य योगी कैसे मुक्त होते हैं उसका प्रकरण आरंभ करते हैं कि पंचीतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे, मेरे से तुम सुनो और समझो। ये निबोध पद दिया है। सांख्य सिद्धांत समझने के लिए होता है, कर्तव्य कर्म त्याग के लिए होता है, करना होता है त्याग के लिए, और सांख्य होता है समझने के लिए। इस बार से सांख्य के प्रकरण यहाँ 13वें में चला है और अगर ही 49 से 55 तक का उसमें विबोध निबोध आया, इसमें निबोध है, दो बार निबोध आया 18वें अध्याय में। इसका अर्थ है पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। सांख्य सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु बताए हैं, वो तू मेरे से समझ। वो 5 हेतु कौन से हैं? अधिष्ठान, एक दो स्थान अधिष्ठान, जिस स्थान में बैठ कर काम करते हैं और जिस शरीर में रहकर काम करते हैं, सो शरीर स्थान ये अधिष्ठानम, तथा कर्ता, एक भीतर जो मैं करने वाला हूं ऐसा मानने वाला कर्ता, जो कि 3 अध्याय के 27 श्लोक में बताया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, जो उन कर्मों के करने में मैं करता हूं मान लेता है। थोड़ा सा ध्यान में, संपूर्ण सृष्टि का काम जिस प्रकृति से हो रहा है, संपूर्ण संसार की क्रियाएं जिस प्रकृति से हो रही है, उसी प्रकृति से ही ये व्यष्टि शरीर का भी संचालन होता है। इसका जीना चलना फिरना बढ़ना घटना आदि बीमारी सुमारी ये, और इसके सिवाय खाना पीना सोचना समझना बोलना जाना आना, ये क्रियाएं भी वो समष्टि शक्ति से ही होती है, परंतु समष्टि शक्ति से होती हुई भी इनको समझता नहीं, वो मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। मैं करता हूं न माने तो भी ये क्रियाएं होगी, ये बांधने वाली नहीं होगी, तो कर्ता बन जाता है। 5 हेतु है, उनमें कर्ता एक हेतु है, अधिष्ठान है, उसके बिना काम कहाँ करें, ऐसे कर्ता के बिना काम कौन करे, तो ये कर्तृत्व भाव है ना, ये इसका खुद का बनाया हुआ है। इस वास्ते का प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, तो 5वें में कहते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्ववेत्ता है वो, अपना कुछ नहीं करता हूं ऐसा माने, माने का अर्थ क्या हुआ, अपना अनुभव करे, काम करते हैं तो उसमें समष्टि प्रकृति के द्वारा क्रियाएं होती है और चेतन के द्वारा क्रिया नहीं होती है, मुख साफ निर्लेप प्रकाशक रहता, वो तादात्म्य करके करता बन जाता है। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः 13 मई 29 में कहते हैं प्रकृति के द्वारा ही क्रियाएं होती है। ऐसा जब ठीक अनुभव हो जाता है तो अकर्तारम सपश्यति, वो अकर्तापन का अनुभव कर लेता, विचार कर दे गए तो उसमें अकर्तापन का अनुभव हो जाता है। थोड़ा और ध्यान दे, आपके अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है जो सुखदाई और दुखदाई होती है, उसमें आप वो प्रकृति परिस्थिति नहीं आई तो ही आप रहते हो, और सुखदाई परिस्थिति आ गई आकर चली गई तो आप रहते हो, और दुखदाई परिस्थिति आई और चली गई उस समय आप रहते हो। आप हर एक परिस्थिति में स्वयं रहते हैं, और ये जितनी परिस्थितियां हैं आती और जाती रहती है, आती जाती रहने वाली प्रकृति है। आप निरंतर रहने वाले हो तो उनके कर्ता आप मान लेते हो, और अगर उनसे अलग अपना अनुभव करो तो अपनी स्थिति ठीक करो तो आप सुख दुखों से छूट जाओगे। सम दुख सुख स्वस्थ 14वां अध्याय में आया। तो ये कर्ता बन जाता है, अधिष्ठानम तथा कर्ता, और करणं च पृथक विधम। ये इंद्रियां कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां अलग अलग ये कारण है, इनसे काम करते हैं तो ये कारण होते हैं। कारण बिना क्रिया सिद्धि नहीं होती, साधक तमम कारण होता। विविधा से पृथक चेष्टा, कर्ता भी है कारण भी है, परंतु ऐसे क्रिया नहीं करेगा, बोला नहीं, बोलेगा नहीं तो बोलना कैसे होगा, तो क्रिया भी होगी। द्विविधा से पृथक चेष्टा और दैवम चैवात्र पंचमम, और जो पुराने संस्कार है हमारे भीतर अच्छे और मंदिर जैसे हमारी प्रकृति बनी है, स्वभाव बना है, वो पांचवा है। ये पांचों मिलकर काम करते हैं, वे शरीर के द्वारा हो, वाणी के द्वारा हो, तो मन के द्वारा हो। 17वें अध्याय में 3 तरह के तप बताए, तो यह साफ नाम कह दिया शरीर वांग मनोवीर यत कर्म प्रारभते नर। शरीर वाणी मन से जो कर्म का आरंभ करता है वो जो ही कर्म का आरंभ न्याय है, विपरीत होगा, चाहे शास्त्र विपरीत करता है चाहे शास्त्र विहित करता है, न्याय शास्त्र विहित और विपरीत जो शास्त्र निषिद्ध, 5 हेतु सब में होते हैं। सर्वकर्मणाम सिद्ध, ये उपक्रम किया था संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु है, सब कर्मों की सिद्धि के लिए वो न्याय हुआ विपरीत हुआ यहाँ विशेष बता दें। ये 5 हेतु बनते हैं, ये 5 हेतु बनते हुए भी कर्तापन जो है वो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति ये माना हुआ कर्तापन है, स्वयं में कर्तापन नहीं है। स्वयं तो प्रकाशक है, जैसे सूर्य सब संसार को प्रेरणा देता है अथवा सूर्य उदय होने से सब आदमी काम में लग जाते हैं, मगर उन कामों के कराने वाला सूर्य का प्रकाश होने पर भी सूर्य कर्मों का कराने वाला और करने वाला नहीं बनता। इस तरह से स्वयं करता हुआ कराता हुआ भी आप करवाते कर्ता नहीं बनता, उनके साथ मिलने से कर्तापन मान लेता। इस वास्ते कहते हैं तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यः। एवं सति का मतलब 5 हेतुओं के होने पर न्याय और विपरीत काम होता है। इसमें केवल मानो शुद्ध आत्मा को जो कर्ता मानता है, पश्यति अकृत बुद्धित्वात्, वो अकृत बुद्धि है, उसके बुद्धि में विवेक नहीं हुआ, जैसे पैदा हुआ था मूर्ता को लेकर वैसी मूर्ता बनी है, अकृत बुद्धित्वा न सपसि दुर्मति, उसकी बुद्धि दुष्ट है अभी शुद्ध नहीं हुई है, इस वास्ते उसका देखना गलत है। और सही देखे तो सही, तो इससे नाहंकृत भाव, उसके अहंकृत भाव नहीं होता। ये 5 हेतु हो गए, इनसे क्रियाएं सब होती है, इसमें मैं करता हूँ ऐसा अहंकृत भाव जिसके नहीं होता। अरे बुद्धि यस्य न लिप्यते जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। ये निर्लिप्तता बताइए कर्मयोग की दृष्टि से पहले तो अहंकृत भाव नहीं होता पांच हेतुओं से। अरे बुद्धि के लेप नहीं होता तो कर्तृत्व न होने से लिप्तता होती ही नहीं और लिप्तता न होने पर भी फिर कर्तृत्व मिट जाएगा। परंतु जिसे कर्तृत्व नहीं है और बुद्धि का लेप नहीं है दोनों बात आई नहीं तो संन्यासी नाम कोचित में जैसे दोनों बात आई ऐसे यस्य न अहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा विषयमान लोकान् न हन्ति न बिध्यते। वो मात्र दुनिया के जीवों को मार दे तो न मारता है न बंधता है। बिना अहंकार की क्रिया के होने से कोई मर जाए तो वो मारने वाला वो नहीं बनता उसका फल भी नहीं मिलता। जैसे गंगा जी के प्रवाह में गायें बह जाए ब्राह्मण बह जाए तो गौ हत्या और ब्रह्म हत्या गंगा जी को नहीं लगती और सैकड़ों हजारों लाखों ही गायों का महाराज पेट भर जाए गंगा जी के जल से घास उत्पन्न करें और उससे गया चर कर तृप्त हो जाए जल पीकर तृप्त हो जाए उम्र बिता दे बहुत बड़ा भारी काम हो गया ब्राह्मणों का काम हो गया गांव के गांव महाराज ठीक तरह से गंगा जी के जल से तृप्त हो गए तो को गंगा जी को पुण्य नहीं लगता क्योंकि गंगा जी ना पाप करती ना पुण्य करती वो तो अपनी धुन में बह रही है कोई सा लाभ ले ले कोई सा नुकसान कर ले उसे अहंकृत भाव नहीं बुद्धि का लेप नहीं तो उसे वो कर्म लागू नहीं। न तो सन्यासी नाम क्वचित जो कहा था कि कहीं नहीं होता कभी नहीं होता यहां तक तो एक प्रकरण बना। अब इस प्रकरण के द्वारा जो आत्मा अकर्ता है और इसका संबंध नहीं है इस बात के जानने के लिए कर्म करने के जितने के साधन है उन संपूर्ण साधनों में और अगाड़ी जो ध्येय है वास्तव में जिसके लिए कर्म किए जाए उन सबके तीन तीन भेद बताते हैं। उसमें सात्विक तो ग्रहण करने के लायक है राजसिक तामसिक त्याग करने के लायक है इस वास्ते प्रकरण उठाते हैं नया। तो ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्म की प्रेरणा होती पहले मन में आती है काम करूं इसके बाद में क्रिया में प्रवृत्ति होती है तो मन में आती है वो काम करने की प्रेरणा कहलाती है। तो प्रेरणा क्या है कि ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता जानने वाला हो उसको ज्ञान हो और किस लिए करता हूं अगर ज्ञेय हो तब उस ज्ञान में उस कर्म में प्रवृत्ति होती है। कर्म में प्रवृत्ति होती है और फिर कर्म करने पर अब कर्म किया तो किसने हुआ करणं कर्म करते थी उसमें कर्ता है और करण जो साधन इंद्रियां वो है और कर्ता स्वयं और क्रिया करणं कर्म करते थी क्रिया की जाए कर्ता हो और करण हो और क्रिया की जाए तब कर्मों का संग्रह होता है। मानो पाप और पुण्य जो लग जाते हैं उसका संग्रह होता है तीनों से। इसमें मुख्य कर्तृत्व भाव है करण और क्रिया है वे तो संग्रह करने वाले के भी ऐसे काम करेंगे संग्रह जैसे नाहकृत हुआ उसके भी करण और ये क्रिया तो होगी परंतु इससे नाहकृतो भाव और बुद्धि ये नहीं होगा तो कर्म संग्रह नहीं होगा और ये साथ में रहेंगे तो कर्तृत्व रहेगा और भोक्तृत्व भाव रहेगा तो कर्मों का संग्रह होगा। तो कर्तृत्व को मुख्य मिटाता है सांख्य योग भोक्तृत्व मुख्यतः मिटाता है कर्मयोग और दोनों से दोनों ही मिट जाते हैं फिर कर्म बांधने वाले नहीं रहते। तो ये कर्म प्रेरक हुए। अब कर्म संग्रह अगर कर्म प्रेरक कहने का तात्पर्य आत्मा करता नहीं है ही नहीं 15-16-17 तीनों में ही आत्मा का अकर्तृत्व का ही वर्णन है। अब वो जो पहले कहा सात्विक आदि के भेद अब बताते हैं ज्ञानं कर्म च कर्ता च ज्ञान कर्म और कर्ता त्रिधैव गुण भेद तो गुणों के भेद से ये त्रिधैव तीन तरह के ही होते हैं ना चार होते ना दो होते त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने, जहां गुण संख्यान है सांख्य शास्त्र है, संन्यास जिसको कहते हैं, जहां विचार की प्रधानता होती है वहां ये तीन गुण है, उन तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान कर्म और कर्ता त्रिगुणात्मक होते हैं। वो यथावत सुनो, भगवान कहते हैं तीन प्रकार का होता है, तुम ठीक तरह से सुनो मन लगा करके। अब सबसे पहले ज्ञान के तीन भेद बताते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावं अव्ययं ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। संपूर्ण प्राणियों में एक तत्व है, जिस ज्ञान से ये जानने में आवे सब में परमात्मा एक परिपूर्ण, और वो अव्यय है। तो प्राणी अलग अलग है, वो एक है। प्राणी घटते बढ़ते मिटते हैं, वो अव्यय है। वो भाव है और इनका अभाव है, पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे, पर वो व्यापक तत्व भाव रूप से है। और अविभक्तम विभक्तेषु, ये विभक्त अलग अलग है, वो विभाग रहित है। ऐसे उस तत्व की तरफ दृष्टि है, ये सात्विक ज्ञान है। और राजस ज्ञान पृथक तेन ज्ञान अलग अलग तरफ दृष्टि है। अविभक्तम विभक्तेषु बता ना, विभक्तों के ऊपर जो दृष्टि अलग, ये शरीर अलग है, ये शरीर अलग है, ये स्थावर है, ये जंगम है, यही मुख्य हो। सब में परमात्म तत्व को देखने वाले की दृष्टि में भी अलग अलग भेद तो है प्राणियों के, परंतु अलग अलग की तरफ दृष्टि न रह करके सब में व्यापक एक तत्व उधर दृष्टि रहती है। और राजस ज्ञान वाले की क्या रहती है, अलग अलग शरीर है, अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग भाव है, अलग अलग इनकी सत्ता है, एक सत्ता नहीं है, अलग अलग है सब। ऐसे प्राणियों में जो देखता है अलग अलग पना, अलग अलग भाव, वो ज्ञान राजस होता है। राजस होता है, राजस क्यों होता है, वो सात्विक क्यों होता है, कि उसमें अपने साथ संबंध न रखने से परमात्म तत्व दिखता है, और राजस होता है अपने साथ संबंध जोड़ लेने से। कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई ठीक है, कोई बेठीक है, कोई अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है, ये संबंध जोड़ देता है, ये राजस हो जाता है। और तामस, ध्यान दे, ये तू कृष्णवत एकस्मिन, एक शरीर, ये इस शरीर में कृष्णवत सब संसार में जितना ज्ञान है वो सब का सब कुछ काम का नहीं, यही ज्ञान है, मैं ही हूं सब। और ये ज्ञान है कि मैं हूं, ऐसा ज्ञान हुआ कैसा है, कार्य सक्तम, जो पैदा हुआ है शरीर उसमें आ सकते है। ज्ञान है कि शरीर पैदा हुआ और मर जाएगा, फिर भी पैदा और मरने की तरफ ध्यान न देता हुआ केवल शरीर की तरफ ध्यान देगा, यही मैं हूं। अतत्वार्थ वो तत्वार्थ नहीं है, तत्व इसमें नहीं है, तत्व का क्षण भंगुर है, और अल्पन से अल्प है। ये ज्ञान तामसिक होता है, तामसिक का मतलब मूढ़ता पूर्वक, मोह पूर्वक होता है। इस वजह से ज्ञान तामसिक है, जो शरीर में सर्वे प्रभाव मानता है कि मैं ही हूं, जो कुछ है आशु संपत्ति में आता है, इधर मध्य में शत्रुओं का नीचे विचार होता है, एक शरीर को लेकर ये तामसी ज्ञान। ज्ञानं कर्मच कर्ता च, ज्ञान का भी वर्णन हुआ, अब कर्म का वर्णन होता है। तो कर्म क्या है, नियतं नियतम संग्रहितम अरागत द्वेषत कृतम अफल प्रेम सुना कर्म यत्त सात्विक मुच्यते। वो सात्विक कर्म है नियत, कर्म का स्वरूप बताया नियतम। सात्विक में भी नियत कर्म, ये कर्म का स्वरूप। संग्रहितम का तात्पर्य है कर्तृत्व अभिमान रहित, अपना साथ में कर्तापन चिपका हुआ नहीं, पराग द्वेष तकृतम, इसमें संग और द्वेष का निषेध कर दिया, राग और द्वेष भी नहीं है, इससे रहित जो किया जाए वो कर्म सात्विक होता है। तो अफल प्रेम सुना साथ में फल की इच्छा न रहे, फल की इच्छा हो तो राजसी हो जाएगा, अपना संबंध जोड़ने से राजसी हो जाता है, और निर्लिप्तता पूर्वक किया जाए वो कर्म सात्विक होता है। सात्विक कर्म और सात्विक त्याग, कर्मयोगी के द्वारा सात्विक त्याग होता है, वहां भी संबंध रहित हो जाता हो, और यह सात्विक कर्म है ये भी संबंध रहित हो जाता है। तो सांख्य सिद्धांत से भी ये निष्कर्म तत्व को प्राप्त होता है, और योग तत्व से मन दोनों से, त्याग और संन्यास दोनों से ही, तो दोनों का भेद पूछा है, तो वहां उसको त्याग कह दिया। कार्य में कर्म नियत क्रियत, भी नियत उसमें नियत है, कर्तव्य करना चाहिए इसमें भी कर्तव्य है, उसमें कर्तव्य तो अभिमान का त्याग नहीं किया, और सब की सब बात है, परंतु कर्तव्य तो अभिमान फल को लेकर होता है, संगम तक तो फल आसक्ति का त्याग कर दिया, तो कर्तव्य तो क्यों करेगा, किस प्रयोजन से नहीं करेगा, इस वास्ते वो भी त्याग छोटे हो जाए। तो ये कर्म हुआ सांख्य सिद्धांत से, कर्म हुआ त्याग के सिद्धांत से, त्याग हुआ उस त्याग सात्विक है, ये सात्विक कर्म है। तो कर्म को चाहे त्याग को निर्लिप्तता है, ये तत्व निकला दोनों का। और राजस कौन सा होता है, जब तू कामे सुना कर्म, पदार्थों की भोगों की इच्छा को लेकर जो काम किया जाए, अथवा दूसरी बात कहते हैं अहंकार साहंकार अहंकार सहित, मैं करता हूं मैं फल भोगूंगा मेरा कर्म है ये, और जिसमें बहुल आयास होता है, परिश्रम ज्यादा पड़ता है, वो राजस कर्म होता है। तो राजस क्यों हुआ, तो ये तू कामेव सुना, पदार्थों की इच्छा रखी थी ना, प्रकृति के साथ संबंध जोड़ा है ना अपना, उससे कुछ लेना है, इस वास्ते ये राजस जो रागात्मकम राग होगा, रजोगुण हो गया, और अहंकार भी रहता। साहंकार कहने का तात्पर्य सात्विक में अहंकार नहीं रहता, ये अहंकार सिद्ध करता, तो अहंकार ये भी प्रकृति का अंश उसको पकड़ा, और बहुलायासम होता है, राजसी पुरुष को बहुलायास होता, आयास परिश्रम ज्यादा होता है, दो कारण है, एक तो शरीर में राग होने से काम करने में परिश्रम ज्यादा भान होगा, दूसरा राजसी पुरुष कर्मों का विस्तार कर देता है, उसको वो चीज दिया और वो लिया और उसकी आवश्यकता उसी आवश्यकता मार कितने बटोर देता है, रोगुणी होता है, इस वास्ते परिश्रम ज्यादा होता है, ये राजसी कर्म होता है। और तामसी कर्म कौन सा होता है, अनुबंधम क्षयम हिंसा मन अपेक्षित पुरुषम, इसका क्या फल होगा ये सोचता ही नहीं, तमस विज्ञान से मोहन में मोह रहता मूल, अनुबंधम और क्षय का नहीं देखता, जिसमें कितना विनाश हो जाएगा, कितने प्राणियों की हिंसा हो जाएगा, और मेरा पुरुषार्थ है कि नहीं मैं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, मोहात आरभ्य थे मोह से आरंभ कर देता, अपनी शक्ति भी नहीं देखता, ये किन सारे जंतु होते हैं झिंगुरे, ये कूद जाते हैं कहां पड़ेगा पता नहीं, आग में पड़ेगा पानी में जमीन में, ऐसे आदमी तामसी कर बैठता है, फिर ठीक हुआ बेठीक हुआ फल क्या होगा ये सोच नहीं सकता, वो तामस कर्म होता, सोचता नहीं कि ये तुम थोड़े से काम करो कितने प्राणियों की हिंसा हो जाएगी, कितनों की हत्या हो जाएगी, तो तामसी बुद्धि है वो विचार नहीं कर सकती, ये तामसी बुद्धि राजसी के पास पड़ती है, स्वार्थ होता है, वो स्वार्थ ज्यादा पैदा हो जाता है, तो चोरी करता है डकैती करता है हत्या कर देता है, कईयों का नुकसान कर देता है, थोड़े से लाभ के लिए बड़ा भारी नुकसान कर देता है, राजकीय कर्मचारी होकर राज के कितना ही नुकसान कर दे, अपने 5-7-10 रुपये मिल जाए इसके लिए, तो वो सोच नहीं सकता कि तेरा का स्वार्थ कितना सिद्ध होगा और अंत में अनर्थ कितना हो जाएगा, कितने को तकलीफ हो जाएगी, ये सोच नहीं सकते, कामात क्रोध और क्रोध आवेश समूह समूह आ जाता है, लोभ में भी सम्मोह हो जाते हैं। तो मूर्ता के कारण से मोहार आरभ्य कर, मूर्ता का आरम्भ कर देता, ठीक बनेगा नहीं बनेगा, वो तामस कर्म होता है। ध्यान देना, राजस तामस त्याज्य हो, ज्ञान भी राजस तामस त्याज्य, कर्म भी राजस तामस त्याज्य। अब कर्ता के भेद बताते हैं तीन तरह के, मुक्त संगो अनंवादी द्वितीय सा समन्वित सिद्ध सिद्ध और निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो अनंवादी, आसक्ति रहित होता है और अहम वदनशील नहीं होता, भीतर में मैं करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, ऐसा अहंकार नहीं होता। ये अहम वदनशील अनहमवादी, अहम वदन से बोलना, तो बोलता है ये मन से, मैं ऐसा करता हूं, ऐसा जिसके भीतर भाव नहीं होता और आसक्ति से रहित है, कोई राग नहीं किसी जगह भी, लाग नहीं, लेप नहीं। तो ये दो बातें उनसे होती है सात्विक कर्ता में। और दो बात बताते हैं, उत्साह सामान्य होता है, धैर्य और उत्साह दो चीज साथ रहती है। दो चीज का त्याग है, मानो करता पर है, फिर आसक्ति का तो त्याग, और धैर्य और उत्साह कितना विपरीत से विपरीत परिस्थिति, अगर घटना घट जाए, कोई ऐसा विपरीत अवसर आ जाए तो उसमें भी धैर्य रहता है, और कार्य सफल होने से जैसे उत्साह होता है ऐसे उत्साह रहता है। क्योंकि सफल होने पर फल चाहने वाला उत्साह ही होता है, फल न चाहने वाला उत्साह कम होता ही, दृढ़ उत्साह समन्वित। तो दो चीजों के सहित रहता है और दो चीजों में निर्विकार रहता है, सिद्ध सिद्ध और निर्विकार, कार्य की सिद्धि हो जाए असिद्धि हो जाए इसमें अपने कोई संबंध ही नहीं, अपना तो कर्तव्य कर्म किया। देखो सात्विक कर्म में, सात्विक त्याग में, कार्य में कीमत कर्म नियतम संग्रहितम, अब सिद्धि सिद्धि और निर्विकार, सिद्धि असिद्धि विकार, पहले सिद्धि का विचार ही नहीं रखता, त्याग है उसका संबंध नहीं है। तो ये सात्विक कर्ता के लक्षण हो, ये दो दो चीज हो, आसक्ति अहंकार का त्याग, धैर्य और उत्साह के सहित, और सिद्धि असिद्धि निर्विकार, वो सात्विक कर्ता होता। तो दो 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 छह हो गए, और दो 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 हो गए, दो और छह ये श्लोक है 26, ये सात्विक त्याग सात्विक कर्ता। रागी रागी कर्म फल प्रेमसु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर शोकान्वित कर्ता राजस, ये छह चौथी चीज है राजसी करता हूं। रागी, भीतर में राग है, पदार्थ चाहिए, भोग चाहिए, व्यक्तियां चाहिए, मान चाहिए, आराम चाहिए, सुख चाहिए, ये राग भीतर बैठा रहता है। कर्म फल प्रेम, जो कर्म किया उसका फल मिले ठीक है, सोया सेवा करी वाह वाह नहीं तो नहीं हो, फल प्रेम सु क्यों जी कैसा काम होगा, हाँ सर बहुत अच्छा होगा, फल मिल जाए किस तरह से, पैसे मिल जाए, मान मिल जाए, बड़ाई मिल जाए, वाह माँ मिल जाए, ये फल की इच्छा वाला होता है। और लोभ बहुत होता है, फल की इच्छा केवल नहीं, मिले जिसमें तृप्ति नहीं होती, और मिले और मिले, और भगत पर दूसरे का नुकसान भी कर दे, हिंसात्मक का अपना लोभ है, पाप का बाप कौन है, लोभ, वो लुब्ध है, इस बात हिंसा तुम हो जाए, पाप नहीं करना चाहता तो कौन कराता है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण कामना रहती है, इस बात हिंसात्मक अशुचि अशुद्ध होता, मलिन होता, क्यों कामनाओं के कारण से आदमी मलिनता आ जाती, जितने जितनी इच्छा अधिक होती है उतनी उतनी मलिनता होती है, जितने दिन इच्छा का त्याग होता है उतने उतनी शुद्धि आ जाती है। हर शोकान्वित, मन चाहे बात हो जाती बड़ी खुशी मनाता है, नहीं होता मुरझा जाता दुखी, हर शोक होता ही रहता, थोड़ी थोड़ी बात में सुखी और दुखी, राजी और नाराज, ऐसा राजस करता, रजोगुणी करता होता, रजस तो फलम दुखम, दुख मिलेगा। तो जो राजसी करता, अब अयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध है, शठ है, नैषकृत है, अलस है, विषादिक दीर्घ सूत्र के आठ गुण होते हैं, वो तामसी करता है, अयुक्त सावधान नहीं रहता, क्षमता तो है ही नहीं। प्राकृत है, जैसे माँ से पैदा हुआ वैसा ही कोई शिक्षा ही कुछ नहीं मिली, पशु की तरह ही अस्तब्धा बढ़ाकर रहती, कठोर पड़ा रहता। रावी अयुक्त है, प्राकृत स्तब्ध है, षठ जिसमें षठता रहती है, षठ मूर्खता, मन विवेक तो नजीक नहीं जाता बेचारे, मूर्खता भरी रहती है, षठ। नैष्कृत का दूसरे की वृत्ति छेदन करता है, दूसरे की जीविका का नाश कर देता है, दूसरा का हित है उसका नाश कर देता है, और आलसी होता है, काम कर लो अभी फिर करेंगे, बैठे बैठे पीछे कर लेंगे, और विषाद दुख रहता है, चिंता रहती है, क्या करें कैसे करें, वो काम भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ, अचानक ही विषाद, चित्त में प्रसन्नता नहीं रहती। कर्तव्य कर्म करने वाले के चित्त में प्रसन्नता रहती है, वो कर्तव्य का त्याग कर दे अप्रसन्नता रहती है, वो जान नहीं सकता कि अप्रसन्नता क्यों, चित्त में दुख क्यों है, और दीर्घ सूत्री से किसी काम में लगेगा तो थोड़े समय में होने वाले काम को भी बड़ा लंबा बढ़ा देगा, और बहुत समय लगने पर पूरा भी नहीं होता, वो दीर्घ सूत्री होता, दीर्घ सूत्री विनिश पतन हो जाता। कर्ता तामस उच्चते, ये तामस ही करता होता। तो ज्ञान कर्म और कर्ता के ये तीन तीन भेद बताए। तो अपना उद्धार चाहता है और सांख्य मार्ग में चलता है तो कर्तृत्व अभिमान नहीं रखे, परंतु वो दूर कैसे होगा, दूर होगा सात्विक तो ज्ञान हो, और सात्विक ही कर्म हो, और सात्विक ही कर्ता हो। तो ज्ञान की प्रेरणा में ज्ञान गेम परिज्ञाता तीन था, उसमें ज्ञान के तीन भेद बताए, ज्ञाता के तीन भेद नहीं बताए, कर्ता के तीन भेद बताए। तो जो ज्ञान कर्म में प्रवृत्त करने वाला होता है उस ज्ञान का ज्ञाता कर्ता के अंतर्गत आ जाता है, और ये तीन तरह का क्या है, ये तीन तरह का अगर सुख होगा, सुख के तीन भेद बताएंगे। प्राणी मात्र का ध्येय ये उद्देश्य जो होता है सुख होता है, आराम मिले, सुख मिले, इस वास्ते वो ज्ञेय होता है, और ज्ञान के भेद बता दिए। और करण कर्म करते थे, उसमें कर्म करण और कर्ता, तो कर्ता के तीन तो भेद बता दिए, और कर्म के भेद भी बता दिए, सात्विक राजतमस कर्म, कर्म के भेद नहीं बताए। कर्णं कर्म करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह, कर्म संग्रह तीन है, उसमें कर्ण के भेद नहीं बताए। कर्ण इंद्रिया है शरीर में, कर चरण आदि ज्ञान इंद्रिया है, श्रोत चक्षु आदि ज्ञान इंद्रिया है, कर चरण आदि कर्म इंद्रिया है, ये सभी इंद्रिया है, इसका नाम कर्ण है, अंतःकरण मन बुद्धि आदि वही कर्ण है। तो कर्ण का भेद नहीं बताए तो हाथ पैर का भेद क्या हो, इनमें भेद होते हैं बुद्धिपूर्वक करने से। तो अगर बुद्धेर भेदम धृते गुण तस्तम, ये कर्ण में बुद्धि रहती, बुद्धिपूर्वक काम करते हैं, तो बुद्धि के भेद तीन तरह के हैं, और बुद्धि को स्थिर रखने में सहायता करने वाली धृति है, इस वास्ते बुद्धि और धृति के भेद तीन तरह के होते हैं, ये कहने के लिए भगवान ने 29 श्लोक में प्रतिज्ञा की। बुद्धेर भेदम धृते सैव गुणतस् त्रिविधम सुनु, ये गुणों से तीन प्रकार के होते हैं। ठीक तरह से मैं कहता हूं प्रोचमानम अशीषे, साफ साफ कहूंगा यथावत सुनो, यथावत प्रोचमान यथावत सुनो, अच्छी तरह सुनो तुम, पर मैं ठीक तरह से कहूंगा। ऐसे गए भगवान बुद्धि और दृष्टि की भेद बताए, ये तीन कहने की प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा करके वो कहते हैं प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्ति और निवृत्ति को जाने, कर्तव्य अकर्तव्य को जाने, भय और अभय को जाने, बंध और मोक्ष को जाने, ऐसे जानने वाली जो शक्ति है वो बुद्धि सात्विक होती है, यथार्थ रीति से इन बातों को जाने। प्रवृत्ति क्या होती है, निवृत्ति क्या होती है, तो इसमें कई भेद है। एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग है। लोगों के देखने में आता है ग्रस्त है ये प्रवृत्ति मार्ग है, साधु ये निवृत्ति मार्ग में है, उसको भी प्रवृत्ति निवृत्ति कहते हैं। परंतु इतने मात्र से प्रवृत्ति निवृत्ति पूरी नहीं जानने में आती। प्रवृत्ति किसी कामना को लेकर की जाती है, प्रवृत्ति वो प्रवृत्ति है, वो ऐसी कामना है, कोई इच्छा है, कोई वासना है, लोग अच्छा कहेंगे, लोगों में ठीक रहेगा, और निवृत्ति में साधु हो जाए तो आराम से रोटी भी मिलेगी, आराम से रहेंगे, ऐसी निवृत्ति वो घोर प्रवृत्ति है, वो निवृत्ति निवृत्ति है। निवृत्ति वास्तव में वो है कि संसार से संबंध विच्छेद हो, जैसे निष्काम भाव पूरा हो, करते तो अभिमान न हो, जैसे 17वें श्लोक में यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य लिप्यते, तो ये निवृत्ति हुई। मानो प्राकृत पदार्थों के साथ स्वरूप का संबंध नहीं है, इस बीच ठीक तरह से जानना और उस संबंध न होने से उसमें कर्तापन नहीं है और काम करता है उसमें भी लेप नहीं है, तो कर्मों के करने में भी वैसा ही है, न करने में भी वैसा ही है, अपनी निर्लिप्तता अपना बोध वैसा का वैसा अखंड रहता है, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानता है। तो जिस बुद्धि से ऐसा हो जाए, मानो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ही निवृत्ति है, जिसकी वास्तविक निवृत्ति दोनों से भी, प्रवृत्ति से भी और निवृत्ति से भी। ये प्रवृत्ति निवृत्ति किस काम में प्रवृत्त होना, किस काम से निवृत्त होना, ये विवेक पूर्वक काम करने वाले की बात है। परंतु बुद्धि सात्विक वो होती है कि प्रवृत्ति निवृत्ति को भी जानती है और कार्य आकार को भी जानती है, कर्तव्य और अकर्तव्य को, इस समय में ये कर्तव्य है, इस समय में कर्तव्य नहीं। तो सात्विक बुद्धि होने से इनका ज्ञान हो जाता है, राजसी होने से अयथावत वो ठीक ठीक नहीं जानती। मानो किसके लिए किस समय में कौन सा कर्तव्य करने लायक होता है, जैसे अर्जुन के यहाँ युद्ध आ गया तो युद्ध करना कर्तव्य हो जाता है, यहाँ हिंसा करना अकर्तव्य होता है, किसी का नुकसान नहीं करना, मार देना तो बहुत बड़ा नुकसान है, परंतु छात्र धर्म की दृष्टि से ये कर्तव्य हो गया, तो कर्तव्य का पालन करना, केवल कर्तव्य का। मानो लोग लालच इच्छा सुख दुख के समय कृपा सुख और दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझ करके, तो जय पराजय की बात न रखे, लाभ हानि की न रखे, सुख दुख को भी न रखे, इनमें समान समझ कर युद्ध करे। तो कर्तव्य कर्म करना ठीक तरह से, अकर्तव्य करना नहीं है और कर्तव्य के साथ में फंसना नहीं है। और भय और अभय जानना है कि कौन से कर्मों में प्रवृत्त होने से भय होता है, कैसे अभय होता है। तो कुछ न कुछ इच्छा होती है, कुछ न कुछ रखना चाहता है, कुछ न कुछ चीज चाहता है, तो उसको भय होता है, और उन चीजों का जब राग त्याग देता है तो अभय हो जाता है, फिर भय नहीं होता, भय रहित हो जाता है। ऐसे दोनों को जानता है जिस बुद्धि से, उस बुद्धि को कहते हैं सात्विकी बुद्धि। एक हमने कथा सुनी है, गोरखनाथ जी महाराज बड़े भारी सिद्ध पुरुष हुए, गोरखनाथ जी के गुरु जी थे वो चले गए उस आसाम में, उसको कामरू देश कहते, मंत्र जंत्रों का बहुत वहां प्रयोग, वहां की स्त्रियां ने उनको बस में कर लिया और उससे काम करावे सब बाबा जी से, और करना पड़े सा परवश हो गए। तो इधर कहीं कोई भंडारा हुआ, उसमें गोरखनाथ जी गए और भी नाथ आए संत, किसने बोल मार दिया कि तू सिद्ध बना कर गोरखनाथ गला, तेरे पिताजी तो वहां भार ढोते हैं, घाने चलाते हैं, बैल बने हुए हैं, ऐसा कह दिया। उन्होंने भी ऐसी बात है तो मैं छोड़ाऊं, तो वहां गए, वहां गए तो पता नहीं लगे महाराज, बैल बना दे मंत्र से, ऐसी ऐसी वहां की शक्ति सुनी, तो ऐसे बना रहे काम लेने को बचित रहे से। बाबा जी पर्वत हुए वसी पे, अब पता नहीं लगा, कोई पद आता है जाग में संतर गोरख आए, मैं समझ गया जागृत करो गोरख आ गया है, ऐसे पता लगा तो परिचय दिया कि मैं फंस गया हूँ, तो ये बड़े शुद्ध थे उस वास्ते वाले सुधा लिए, कोई उस पर आक्रमण नहीं कर सकता, ऐसे उनके मंत्र से सब छुड़ा करके लिया, तो चलो अपने कहते भाई चलो। तो दोनों बाबा जी चले चले, तो मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा कि देखो बेटा इधर भय है, मानो जंगल के ही जंगल में जाना होता है तो भय है, और इस रस्ते कुछ घुमाव तो पड़ेगा ना, भय नहीं है बस्ती नजीक नजीक बस्ती है ऐसा तो भय नहीं, तो हमारा भय का आएगा अपने चलो। तो बाबा जी ने कहा तो ठीक, गुरु जी की बात भी मानना है, आगे कुआं आ गया पानी उसे भरा और महाराज ने अपनी झोली दे दे, ले बेटा झोली ले ले भारे मैं सोच रहा हूँ, तो झोली दी भारी भारी, वजन देखा उसमें खोद दे तो सोना सोना भरा, बाबा जी ने देखा सोना ले लो यहां से काम आएगा, वे शौच गए पीछे संस्कार गए कुएं में डाल दिया सोना फेंक दिया, वहां हाथ धुला करके चले झोली दे दी हाथ मार दी, अरे गुरु ये क्या किया, कहते इस रस्ते चलो इसमें भय है कि भय तो कुएं में डाल दिया, भय तो गया कुएं में, अब भय का आएगा अब किधर चलो, बोले कोई पकड़ क्या करेगा बाबा जी का, वह तो लूटे, इस वास्ते ये भय क्या होता है कि संसार की चीजों को जितनी रखना चाहते भय ही भय होगा, अभी चाहे निश्चय करो अगर भय होगा ममता कर ली मेरा तो बंद गए, तो सात्विक की बुद्धि इसको जानती है कि इससे भय होता है तो वो अभय हो जाएंगे, तो प्रवृत्ति विवृत्ति कार्य अकार्य बंदर मोक्ष भय और अभय बंदर मोक्ष, इसमें वो सब मोक्ष को ले लेगा अभय हो जाएगा, इसका ग्रहण कर लेगा दूसरे का त्याग कर देगा, ऐसी विवेकवती बुद्धि है उस बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहते हैं। अब समय हो गया योगी साधक के लिए ये ज्ञान सब जगह परमात्मा ही अटल रहना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान तो जैसे जैसे करना चाहिए ज्ञान होंगे, इन ज्ञानों में उलझ न जाए, सब जगह परमात्मा पूर्ण है ये ज्ञान रहना चाहिए, राजसी और तामसी ये ज्ञान नहीं रहता, और सात्विक ही ऐसा ज्ञान रहना चाहिए, इस ज्ञान पूर्व क्रिया होनी चाहिए। हाँ पृथ्वत्व है ना, तो अलग अलग आपस में अशेष मन बाकी नहीं रखूंगा, कहां कहा है बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्र विदम शृणु, गुणों के काम तीन भेद होते हैं बुद्धि और धृति के, गुणों से विभाग होते हैं, प्रोच्यमानम अशेषेण बुद्धि और धृति के भेद ठीक ठीक मैं कह दूंगा, तो ये सांख्य योग के लिए बुद्धि और भेद की धृति के भेद की बड़ी आवश्यकता है। बुद्धिया विशुद्ध या युक्तो धृत्यात्मान नियम से अगड़ी कहेंगे समय समय रूप में बुद्धिया धृति गृहित आत्मसंस्तम न कृत्वा न किंचित विचिन्तये। तो ये साधकों के बड़ी काम की चीज है। बुद्धि समझ भी बहुत काम की चीज है, धृति भी बड़ी काम की चीज है। नहीं तो एक साधन पर दृढ़ रहना कठिन होता है। तो इसमें विशेषता से सोचना है, ये साधक के बहुत काम की चीज है। इस वास्ते ठीक ठीक कहूंगा, अलग अलग बता दूंगा। जिसे सात्विक को तो ग्रहण करना है, राजस्तामसिक त्याग करना है, और सात्विक को ग्रहण करना उसे चिंत नहीं होना है, दृढ़ रहेगा। व्यवसाय आत्मिक बुद्धि एक दृढ़ रहेगा। अलग अलग बता दूंगा और बाकी कुछ नहीं रखूंगा। थोड़े शब्दों में बहुत बातें कही गीता में। एक जगह किया है ये, वो व्यतिक्रम से कर दिया कि अगर कार्य मिति व्यतिक्रम नियतं क्रियते संगम तत्वा फलम चैव सत्याग सात्विक। तो सात्विक कर्म है और भगवान के मत में कर्म है, वो एक ही है। पास पास में रहते पुनरुक्ति दीखती। अब तामस राजस कर सात्विक कहा तो भगवान का मत और सात्विक। तो सिद्धांत से दुनिया की दृष्टि से तामस राजस सात्विक है और भगवान कहते मेरा निश्चय है। तो मेरा निश्चय वही है जो सात्विक है, सात्विक वही है जो मेरा निश्चय है। इन दोनों को एकता करी, एकता पास पास में पुनरुक्ति दीखती। इस बात से तामस राजस कह करके और उत्तम मत बताना है ना। तो पहले जो उत्तम नहीं है उनका विश्लेषण किया, फिर निश्चित मतम उत्तमम, मेरा मत उत्तम है, निश्चित किया मत है उत्तम है। तो उत्तमता तो पहले अधमता कह दी जाए तब न उत्तम होता है। इस बात से नारायण 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 राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता।